قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں خدا کو جاننا، نوئنگ گاڈ، خدا کو جاننا اور پہچاننا، اور ہم نے اس بابت کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں سیکھے۔ جہاں ہم نے سلسلہ روکا تھا وہ آخری پوائنٹ، نقطہ یہ تھا کہ خدا کو جاننے اور پہچاننے کی بابت بائبل کیا کہتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اس کو جانے کیسے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت دور ہے اور ہم زمین پہ، ہم کیسے جانے اسے؟ پھر کچھ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، پاک ہے، اور ہم بڑے چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ناپاک ہیں، تو ہم اس کو جان نہیں سکتے، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے یہ اتنی محنت کرنے کی کہ اسے جانیں۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بائبل یہ بتاتی ہے خدا خود چاہتا ہے لوگ اسے جانیں، خدا خود چاہتا ہے کہ لوگ اسے جانیں اور پہچانیں، اور اسی لیے اس نے خود کو لوگوں پر ظاہر بھی کیا۔ خدا کی خواہش ہے کہ لوگ اسے جانیں، خود خدا نے ظاہر کیا اپنے آپ کو، پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی۔ اور خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا، خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا، خدا باغ عدن میں ٹھنڈے وقت میں کیا کرتا تھا؟ آدم اور حوا سے ملاقات کرتا تھا، نبیوں پر خدا ظاہر ہوتا رہا۔ پھر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح میں، اور پھر رسولوں پر خدا اپنا آپ ظاہر کرتا رہا، ایمانداروں پر خدا اپنا آپ ظاہر کرتا رہا۔ خدا کی خواہش ہے یہ لوگ اسے جانیں، خدا اسی لیے اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ دیٹس ہز وش دیٹ پیپل مے نو ہم اینڈ ہی ہیز ریویلڈ ہم سیلف مینی ٹائمس۔ پھر یہ جانا ہم نے کہ ہمیں خدا کو جاننے پہچاننے کی خواہش رکھنی چاہیے، وی شیل ہیو اے ڈیزائر ٹو نو ہم، ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اسے جان سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہمیں خدا کی پہچان میں بڑھنے کی ضرورت ہے، پہچان لیجیے بھائی شاکر ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، اس سے آگے کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے جان پہچان بڑھانے کی، بس جان لیا نا یہ بھائی شاکر ہے، کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی؟ ایسا بھی ہم کرتے ہیں نا، ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، صرف جان لیا، اچھا بھائی یہ سمیر ہیں، اچھا ان کے لیے دعا ہو رہی تھی، اوکے جی تھینک یو جی، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بارے میں صرف یہ جان لینا کہ خدا ہے اور یہ ہے، یہ کافی نہیں، آگے بڑھنا ہے، پہچان میں بہت آگے جانا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں بڑھنا، ریلیشن شپ میں بڑھنا ہے۔ خروج تیسرے باب میں ہے، موسیٰ نے خدا سے کہا میں جب جاؤں گا اسرائیلیوں کے پاس تو انہیں کیا بتاؤں، تو اپنا نام تو بتا، کون سے خدا نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے؟ تو خدا نے کیا نام بتایا؟ میں جو ہوں سو ہوں، ان سے کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر کہتا ہے نام تو بتا، اب یہ تو تیری ایک جلال کی کیفیت ہے نا، میں جو ہوں، آگے کچھ ریفرنس بتا، اپنا پہچان بتا، اپنا تعارف بتا۔ تو پتہ کیا خدا نے بتایا؟ ان سے کہنا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یہ ہے تعلق میں، پہچان میں، رشتے میں آگے بڑھنا، کہ ہم خدا کی پہچان ہو جائیں، خدا خود کہے کہ انسانوں سے کہنا کہ میں ابراہیم کا، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ خدا کے ساتھ پہچان میں اتنا آگے جائیں کہ وہ یہ کہے کہ میں عنایت کا، میں آئزک کا اور میں جانتھن کا خدا ہوں۔ सिर्फ खुदा को जान के पहचान के उधर रुक जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। बाबल में एक शख्स था, अकेला ही था, काबू आ गया, शेरों की गार में फेंक दिया गया। तो बादशाह ने पता क्या कहा बाद में, दानियेल का खुदा मुबारक हो, वही हकीकी खुदा, दानियेल का खुदा। पहचान में दानियेल खुदा की पहचान में इतना आगे चला गया, उसको मालूम था कि मैंने खुदा को ऐसे जान लिया और पहचान लिया है कि गार में गिर भी जाऊंगा, मुझे फेंक भी दिया जाएगा तो मुझे कुछ ना होगा, क्योंकि मैंने वहां दुआ की और खुदा ने फरिश्ता भेजा और मुझे बचा लिया। खुदा को जानने और पहचान में इतना आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम खुदा का तारुफ हो जाएं और खुदा का नाम हमारे साथ जुड़ जाए, कि लोग बात करें किसका खुदा, पीटर का खुदा, किस खुदा की बात करते हो, रोमन के खुदा की बात, किस खुदा की बात करते हो, मैं वीनस के खुदा की बात कर रही हूं। खुदा हमारे नाम से पहचाना जाए, फिर इतनी पहचान हमारी खुदा के साथ हो जाए, हम खुदा को इतना जान लें कि फिर मसीह हम में और हम मसीह में हो जाए, फिर हम जिंदा ना रहें बल्कि मसीह हम में। पतरस के साथ एक वाकया पेश आया, मियां बीवी थे, उन्होंने झूठ बोला, याद आ गया ना, अमाल की किताब में बाब नंबर 5 है, हननिया और सफीरा ने झूठ बोला, तो पतरस के सामने थे, उसने ये नहीं कहा कि मेरे सामने झूठ क्यों बोला, उसने कहा तुमने कैसे सोच लिया कि खुदा से झूठ बोलो, क्योंकि उसके अंदर कौन था, पतरस के अंदर था, इसलिए पतरस कहता है तुमने ये कैसे जुर्रत कर ली कि खुदा से झूठ बोलो, क्योंकि पतरस खुदा को जान गया था कि वो मेरे अंदर है, इसलिए जो ये मुझसे कर रहे हैं वो खुदा से कर रहे हैं। सो खुदा को पहचानने में आगे बढ़ने की जरूरत है, उसकी पहचान में आगे बढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी गलती हम जो कर जाते हैं, हम पहचानने में भी गलती कर जाते हैं, 4-5 लोग होंगे इकट्ठे और उनमें से एक का तारुफ होगा, जी ये भाई जस्टिन जॉन है, और हम शहजाद साहब को पकड़ के, क्योंकि टाई लगाई हुई है उन्होंने, हम कहेंगे यही बंदा जरा सूटेड बूटेड है, और उन्होंने तो टाई नहीं आज लगाई हुई कईयों ने, तो यही बंदा मुझे लग रहा है, बड़ा अच्छा सा तैयार हुआ हुआ है, स्मार्ट और हैंडसम है, उसकी लुक्स भी प्रोफेसर वाली है, तो कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कौन है, और उसको मिसट्रीट कर देते हैं, हमें जैसा सलूक नहीं करना चाहिए वैसा कर देते हैं, हम बड़ी गलती करते हैं। खुदा को जान तो लेते हैं लेकिन जिस लायक वो है उससे वो सलूक नहीं करता। हम में से कौन है जो खुदा के बारे में कहता है मुझे पता ही नहीं कि खुदा कोई है भी, है खुदा होता भी है, लेकिन हम खुदा से मुनासिब सलूक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ 10:15 की, आप कितने बजे जाओगे, कितने बजे पहुंचोगे हॉस्पिटल में, 10:30, 11:15, 11:30, 11:30, 12:15, 12:00। जब 10:15 की अपॉइंटमेंट है तो कोशिश करेंगे 5-10 पहले पहुंचे, जाके रजिस्टर करवा लें, टोकन करवा लें, अगर हमने स्लिप लेनी है वो ले लें, फीस पे करनी है वो कर लें, या लाइन में अगर बैठना भी पड़े तो हम पहले बैठे हों, भाई हमारा टाइम है, हम उससे पहले आ गए। ये है डॉक्टर के साथ वाजिब सलूक। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट आप लेट नहीं कर सकते, वो दूसरों को बारी दे देंगे। अब बैंक में जाते हैं, टोकन लेके बैठते हैं, अगर आपने अपनी बारी मिस कर दी तो अगले टोकन को वो बुला लेते हैं, नो यू आर गॉन, आपकी बारी आई थी आप नहीं थे, फिर दोबारा टोकन लो, फिर लाइन में लगो। हमने खुदा को जान तो लिया, वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, वो मोतबर और पाक हस्ती है, वो सबसे अजीम है। अपॉइंटमेंट 4:30 की होती है, आते कितने बजे हैं, यहीं से अंदाजा करें कि हमने उसके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया। खुदा को जानने और पहचानने के जराए क्या हैं, व्हाट आर द मींस, द वेज टू नो हिम, किस तरह से, किन तरीकों से हम खुदा को जान सकते हैं, कैसे खुदा को जाने। हम तो अपने गुआंढी को नहीं जानते, हम साए को नहीं जानते, वी डोंट नो इवन आवर नेबर्स, उनके नाम क्या है, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं हमें नहीं पता, कितनी फैमिलीज हम रहते हैं अपने अलावा हमें किसी का ही नहीं पता कि उनका नाम क्या है, बस ये शक्ल से पता है, उतरते आते जाते कहीं हाय हेलो एंड दैट्स इट। खुदा को कैसे जाने। रोमियो के खत के पहले बाब में खुदा ने अपनी बनाई हुई चीजों से अपना आप जाहिर किया हुआ है। रोमियो पहला बाब है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। कायनात में जो कुछ है वो जाहिर करता है कि कोई इसे बनाने वाला है, कोई है जो इसे बनाने वाला है, ये सारा निजाम कोई बना के बैठा हुआ है। दिन है, रात है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, बादल हैं, रोशनी है, अंधेरा है, परिंदे हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, फूल हैं, सब्जियां, फसलें हैं, सारे मौसम हैं, हमारी जिंदगियां हैं, किसी ने इन सब को बनाया है एक सिस्टम में, एक निजाम में इसे बांधा है, कोई है जो इसे बनाने वाला है, कोई है जो इन्हें संभाल के बैठा हुआ है, कोई है जो सारे निजाम को कंट्रोल करता है। हमारे तो बच्चे दो हों और जरा सा हम दोपहर में मां बाप सो जाएं और बच्चे जागते रहें तो बाहर हॉल में या घर के दूसरे हिस्सों में फिर उधम मचा होता है ना तजुर्बा। छोटे बच्चे मां बाप की आंखों से बड़ों की आंख से ओझल हो जाएं तो वो अपनी मर्जी से घर में जिस जगह भी हों वो तूफान मचाते हैं, उनको पता होता है कि अब कोई पूछने रोकने वाला नहीं है, जो कंट्रोल करने वाला जब नाना हो सर पे तो फिर हालात कैसे होते हैं ये आपको पता है, और अगर कोई कंट्रोल करने वाली हस्ती ना हो तो फिर ये दुनिया का निजाम कैसे कायम रह सकता है, हर कोई अपनी मर्जी से ही करेगा सारे काम। हम जो ड्यूटियां करते हैं, जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, ये भी एक सिस्टम में करते हैं ना, कोई है हमारे ऊपर निगाह रखने वाला, ध्यान रखने वाला, फिर हम सारे सिस्टम में काम करते हैं, सारे फिर अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। कोई है जो बनाने वाला है, कोई है जो सब कुछ संभाल के बैठा हुआ है, कोई है जो इंतजाम करता है सारी चीजों का, कोई है जो सब कुछ देता है। खुदा की जात और उसकी सिफतों के बारे में कई बातें मखलूकात से, खुदा की बनाई हुई चीजों से, उसकी क्रिएशन से जाहिर होती है। खुदा की मखलूकात से खुदा के बारे में, उसकी जात, उसकी खूबियों के बारे में पता चलता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया है। कायनात में सारी चीजें खुदा के बारे में कुछ कुछ चीजें बताती हैं, जिसने सूरज बनाया और उसके अंदर कितना नूर होगा थोड़ा सा हमें पता चल जाता है, ठीक है, जिसने खूबसूरत फूल बनाए उसके अंदर कितनी खूबसूरती होगी, जिसने सारे रंग बनाए उसके अंदर कितने रंग होंगे, जिसने ये सारा निजाम बनाया और उसकी अकल कितनी होगी। ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस कायनात को देख के पता चलती हैं, लेकिन कामिल मुकाशफा नहीं मिलता, परफेक्ट रेवलेशन नहीं मिलता, सारी बातें मुकम्मल तौर पर हमें पता नहीं चलती कि कायनात की चीजों को देखकर खुदा कैसा है और उसको कैसे हम जाने और पहचाने, सारी चीजें नहीं पता चलती, कुछ कुछ पता चलती है। कोई है जिसके बारे में लिखा है बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया। शागिर्दों ने कहा हमें बाप दिखा, हमें खुदा दिखा। तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं, मैं और बाप एक है। हम दुनिया के सारे मामलात को, कायनात को, चीजों को देखकर, उन पे ध्यान करके, तवज्जो करके खुदा के बारे में सीख सकते हैं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह पर तवज्जो करके, उस पर ध्यान करके, उसकी जात और हस्ती में हम खुदा को देखते हैं, हम खुदा को जानते हैं, क्योंकि उसी ने खुदा को जाहिर किया। इब्रानियों के खत में लिखा है वो उसकी जात का नक्श है और उसके जलाल का परतव है, यानी शेडो ऑफ हिज ग्लोरी है और नक्श है, वो उसका इमेज है। सिक्कों पे नक्श बने होते हैं, कभी बादशाहों के या बड़ी हस्तियों के या मुल्क के झंडे का या किसी बड़ी बिल्डिंग का, वो नक्श होता है कॉइन्स पे, वो नक्श होता है, वो असल चीज की बिल्कुल हूबहू नकल होती है, वो उसका अक्स होता है, उसमें नक्श उसमें आता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की जात का नक्श है, वो जिस्म में था, उसकी खूबियां, उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसकी हशमत, उसकी मोहब्बत, उसका फजल और उसका रोब भी जाहिर करता था कि खुदा ऐसा है। उसका बदन खुदा का नक्श नहीं था, उसके अंदर जो खूबियां, उसके अंदर जो ताकत थी, जो कुदरत थी, वो जाहिर करती थी कि खुदा ऐसा है। सो हमने खुदा को जानना है तो मखलूकात में, क्रिएशन में, व्हाट गॉड हैज मेड, जो खुदा की बनाई चीजें हैं उनमें, और फिर खुदावंद यीशु मसीह में हम ये जान सकते हैं कि खुदा कैसा है। हम खुदा को इसके वसीले जान सकते हैं। और फिर खुदा का कलाम है, खुदा ने जो अपने मुंह से कलाम किया, खुदा ने अपने आप को जाहिर किया, और फिर कलाम लिखा गया रूहुल कुद्स की तहरीक से। और पतरस रसूल ने यह कहा है कि हमारे पास जो कलाम है वो घड़ी हुई कहानियां नहीं है, वो इंसानों की तैयार की हुई कहानियां नहीं है। खुदा का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, क्योंकि नबियों ने, रसूलों ने जो कलाम किया वो रूहुल कुद्स की तहरीक से किया। खुदा का कलाम, इसके जरिए हम खुदा को जान सकते हैं, मखलूकात के जरिए, कायनात में खुदा की बनाई चीजों के जरिए, खुदावंद यीशु के जरिए, और फिर खुदा के कलाम के जरिए हम जान सकते हैं खुदा को, खुदा को पहचान सकते हैं। और जितनी बातें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, हमारे सीखने के लिए, हमारे अकलों को मुतमईन करने के लिए, हमारी रूहों की उस प्यास को जो खुदा को जानने की बाबत है, उसे मुतमईन करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो इसमें लिख दिया गया है। उससे आगे अब कुछ जरूरी नहीं, ये कलाम मोतबर है, ला तब्दील है, ला खता है और कामिल है, अब इसमें इजाफे की गुंजाइश नहीं है। मुकाशफा के बाद अब किसी तरह की नबूवतों के तहरीर होने, कलाम के लिखे जाने, किताबों और नुस्खों और सहीफों के तरतीब पाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ हमारे लिए जरूरी है वो इस कलाम में मौजूद है, वो लिखा जा चुका है। अब ये देखें कि बाइबल खुदा के बारे में क्या बताती है। खुदावंद यीशु हमारे सामने है, बदन में नहीं है, कायनात हमारे सामने है, हम कुछ चीजें उससे जान लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो सबसे बड़ा वसीला है ना खुदा को जानने का, हमने यीशु के जरिए भी जानना है, तो इसमें लिखा है यीशु के बारे में। کلام میں ہمیں خدا کے بارے میں سب علم ملتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. سو یہ ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے, ہم اس پہ توجہ کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ خیال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خدا ہے ہی نہیں. احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے وہ احمق ہیں, دے آر فولز, فولش ہیں وہ. Who they say that there is no God, they are foolish. کائنات کو دیکھ کے پہلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کوئی ہے جو بنانے والا, کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی ہے. تو جس کو عقل ہے, جس کے پاس وزڈم ہے, جس کے پاس تھوڑا سا شعور ہے, وہ یہ ضرور کہے گا اتنے بڑے سنسار کو, اتنی بڑی دنیا کو بنانے اور چلانے والی کوئی ہستی ہے. تو یہ عقل مند لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک حقیقی زندہ ہستی ہے, خدا کا وجود ہے. خدا ایک حقیقی اور زندہ ہستی ہے, نہ وہ پتھر میں ہے, نہ وہ کسی تصویر میں ہے, نہ وہ کسی میٹل یا دھات میں ہے, سونے چاندی لوہے تانبے پیتل کے بنے ہوئے کسی مورت بت سٹیچو میں نہیں ہے. وہ کسی پینٹنگ میں, کسی سکیچ میں بھی نہیں ہے. وہ ایک زندہ ہستی ہے, زندہ ہے وہ اور حقیقی ہے. بائبل اس پہ بحث ہی نہیں کرتی کہ دیکھو ایک خدا ہے اور اس کی دلیلیں یہ ہیں. نہیں, بائبل شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے, ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ, ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان پیدا کیے. بائبل بحث ہی نہیں کرتی, کیا وہ ہم بات کریں تمہیں منانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ خدا ہوتا ہے, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خدا تھا اور اس نے یہ بنایا. نہیں, بائبل ایسے شروع نہیں ہوتی کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے گاڈ اینڈ دین ہی میڈ ایوری تھنگ. بائبل شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ. بائبل شروع اس خیال سے ہوتی ہے کہ خدا ہے, خدا ہے, خدا ہے. ہی از اینڈ ہی از اے لیونگ بینگ, ہی از اے لیونگ پرسنالٹی. وہ ذات ہے جو زندہ ہے, وہ مورتیوں میں نہیں, وہ قبروں میں نہیں, وہ دیواروں پہ نہیں, وہ زندہ ہے اور حقیقی ہستی ہے اور وہ قائم بال ذات ہے. سوچتے ہیں اگر ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا. تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا خروج تیسرے باب میں خدا نے موسیٰ سے نام اپنے کا ذکر کیا کہ ان سے کہنا کہ میں جو ہوں آئی ایم نے مجھے بھیجا ہے. آئی ایم, میں ہوں, کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں تھا, میں ہوں. اور جو لفظ ہے وہاں پر حقیقی جو موسیٰ کو بتایا گیا اور پھر اس کا ترجمہ میں ہوں کیا گیا ہے, اس کے معنی ہیں وہ جو خود سے قائم ہے. لفظ یہوہ, یہوے, یود ہے واب ہے, چار لفظ حرف ہیں عبرانی کے. عبرانی بولنے والے یہودی ایمان کے حامل لوگ اس لفظ کو بولنے سے گھبراتے ہیں کہ یہ خدا کا مقدس ترین نام ہے, اور ہم اگر غلطی سے ناپاکی ناراستی نجاست کی حالت میں یہ نام لے لیں گے تو خدا کی گستاخی ہو جائیں گے. اس لیے وہ اس کی جگہ ادونائی لفظ استعمال کرتے ہیں. لکھا جاتا ہے یود ہے واب ہے وائی ایچ ڈبلیو ایچ,
और वो बोलते नहीं इसे, उसको आदुनाई पड़ जाते हैं। लफ्ज याहवे यहोवा का मतलब है वो जो खुद से कायम है, ही हु इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, उसको अपने वजूद के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, उसका आगाज नहीं, वो खुद शुरू है। He is the beginning and he is the end. वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है, ना कोई उससे पहले था कि जिससे वो निकलता। खुदा कायम बिल जात है, वो अपनी जात में कायम रहने वाला है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं कि जिससे वो कायम रहे। यहवे यहोवा जिहोवा आदोनाई, जो उसको लफ्ज मुतबादल इस्तेमाल होता है, उस हकीकी लफ्ज का मतलब है वो जो कायम बिलजात है, ही इज सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, उसको अपने वजूद के लिए कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो मोहताज नहीं किसी का। इस जमीन को कायम रहने के लिए, आसमान का वजूद कायम रहने के लिए खुदा की जरूरत है, मुझे और आपको जिंदा रहने के लिए खुदा की जरूरत है, लेकिन खुदा को अपने वजूद के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए यह ख्याल जहन से निकाल दीजिए कि उसको किसने बनाया। जबूर 102 में 25वीं से 27वीं आयात, तूने कदीम से जमीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सनत है, वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बर्स ला इंतहा होंगे। सब कुछ खत्म भी हो जाए, खुदा कायम रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ के बगैर भी कायम है। जो सब कुछ के बगैर कायम है, वो सब कुछ के बगैर कायम रह सकता है। इसलिए बाइबल बताती है कि वो खुद से कायम है, उसको पैदा होने के लिए, उसको बनने के लिए, उसको कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। इसलिए ये सवाल हमारे जहनों से निकल जाना चाहिए कि खुदा कहां से आया, खुदा कहां से आया। ये सवाल खत्म हो जाता है क्योंकि वो कायम बिल जात है, वो अपनी जात में कायम रहने वाला है, उसको अपने वजूद के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। वो अय्यूब से कहता है कि जब मैंने बुनियादें डाली जमीन की, कौन था, कौन था जो मुझे सिखाता, कौन था जिसने मेरे साथ पैमाइशें की, कौन था जिसने मेरे साथ डोरियां और सूत खींचे, कौन था जिसने मेरे साथ निशान लगाए और बुनियादें रखी, कोई नहीं था, मैं ही था। खुदा खुद से कायम है, उसको कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और खुदा अजली और अबदी है, इज इटर्नल। जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी खुदा रहेगा। जबूर नंबर 90 में मूसा की दुआ है ये, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या दुनिया जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अब तक तू ही खुदा है, ही इज इटर्नल। लफ्जों की हद खत्म हो जाती है लेकिन अजलियत और अबदियत की हद खत्म नहीं होती। इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान पैदा किए, और इब्तदा से पहले क्या था, जब कुछ ना था खुदा था, या फिर कलमाए खुदा। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसी के वसीले पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा था, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जबूर 102 में से भी पढ़ा कि सब चीजें खत्म भी हो जाएंगी तो तू कायम रहेगा, क्योंकि तेरे बरस ला इंतहा है। कायनात के बनने का एक वक्त है, लेकिन उससे पहले भी खुदा मौजूद था। कायनात के खात्मे का एक वक्त है जो खुदा ने मुकरर किया, और उसके बाद भी खुदा रहेगा,
खुदा रहेगा। वो कहता है मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। खुदा को पहचाने, खुदा को जान ले।